नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
आप सभी श्रोता मित्रों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सब पर अपने अनुग्रह प्रदान करें, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ दे, ताकि जो कुछ हम सीखें निश्चित रूप से हम इसे प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक आशीष का कारण बन सके। हमारे हर एक श्रोता भाई बहन जो निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं, आप उनकी सुधि लें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 78 से देखेंगे, जिसका विषय है मूसा से दाऊद तक इसराइल का इतिहास। यह भजन आसाप का मश्किल है, अर्थात निर्देशन, जिसमें मिस्र से लेकर दाऊद के राज्यकाल तक के इतिहास का संदर्भ है। इस भजन में हम इसराइल की चूक और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखेंगे। यह एक अद्भुत भजन है और प्रार्थना सुनने तथा उत्तर देने के लिए परमेश्वर को पुकारता है। सबसे पहले तो यह इसराइल के परमेश्वर की पुकार है। वह अपने लोगों को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए कहता है। भजन संहिता 78 के एक पद में लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। यह एक लंबा भजन है और हम इसके केवल मुख्य बिंदुओं को ही देखेंगे, परंतु आप अपने बाइबल में पूरा भजन अवश्य पढ़ें, आपको आशीष मिलेगी। भजन संहिता 78 उसके 9 और 10 में लिखा है, एप्रेमियों ने शस्त्रधारी धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। यह उस समय की बात है जब एप्रेम युद्ध में नहीं गया था और परमेश्वर ने उसे ध्यान में रखा। विस्तृत परिदृश्य में देखा जाए तो एप्रेम इसराइल वरन परमेश्वर के सब लोगों का प्रतीक है। उस समय तो वह इसराइल है, परंतु आज के परिदृश्य में यह कलीसिया है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता कभी नहीं बदलती। भजन संहिता 78 उसके 17 से 19 पद में लिखा है, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्लज देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? मैं इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका अनुवाद दूसरे शब्दों में करता हूँ, और उन्होंने जंगल में परम प्रधान को कूपित करके और अधिक पाप किया, और उन्होंने अपनी लालसा का भोजन मांग कर परमेश्वर की परीक्षा ली। हाँ, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर जंगल में हमें खाने को भोजन दे सकता है या भोजन देगा? यह ऐसे अविश्वास का प्रतीक है जो आज विश्वासियों में पाया जाता है। यह परमेश्वर की प्रजा का नास्तिकवाद है। देखिए परमेश्वर ने क्या किया। भजन संहिता 78 के 25 में लिखा है, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। स्वर्गदूतों की रोटी, अधिक अच्छा अनुवाद होगा सर्वशक्तिमान का भोजन। मनुष्य ने सर्वशक्तिमान का भोजन किया, उसने उन्हें तृप्त किया, उसने उन्हें वह सब दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, परंतु इसके उपरांत भी वे परमेश्वर पर संदेह करके उसकी आलोचना कर रहे थे। यह भजन दाऊद के नाम से अंत होता है। भजन संहिता 78 उसके 70 से 72 पद में हम पढ़ते हैं, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया। वह उसकी प्रजा याकूब की, अर्थात उसके निज भाग इसराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। मेरे मित्रों, दाऊद अपने प्रभु यीशु, जो दाऊद का पुत्र था, उसका प्रतीक है। परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य था और वह आज हमारे साथ भी विश्वास योग्य है, हम सबके साथ है। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 78 समाप्त होता है और अब हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 79 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है महाक्लेश में इसराइल का भविष्य। यह एक प्रार्थना है, परंतु आपके और मेरे लिए नहीं, यह परमेश्वर की प्रजा इसराइल की प्रार्थना है। यह प्रार्थना उन पर आने वाली विपत्ति महाक्लेश के युग की है। यह आसाफ का ही एक और भजन है। वह एक महान संगीतकार और भजनों का संपादक था। वह दाऊद का समकालीन और अति संभव है कि उसका सहायक भी था। भजन संहिता 79 के एक पद में लिखा है, हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। यद्यपि रचना के समय यह भजन भविष्यवाणी का भजन था, परंतु यह नबूकदनेस्सर के घेराव और इसराइल की बंधुआई का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। मकेबी युग में उन पर संकट आया था, परंतु इस भविष्यवाणी की परिपूर्णता महाक्लेश के युग में भी होगी। बाबुल की बंधुआई से पहले झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि परमेश्वर उनके विनाश और बंधुआई की अनुमति कभी नहीं देगा। तथापि झूठी भविष्यवाणियों के अनुसार जिस नगर का पतन असंभव था, वह जीत लिया गया और वहां के निवासी बंधुआई में ले जाए गए। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का मंदिर नष्ट नहीं किया जाएगा, परंतु मंदिर ध्वंस्त किया गया। वह नगर निसंदेह यरूशलेम था और प्रजा इसराइल की थी। ऐसा कई बार हुआ और इसराइल परमेश्वर की दुहाई देने पर विवश हुई। मंदिर पवित्र स्थान उनका केंद्र स्थान था। आप स्मरण रखें कि यह लैव वर्ग के भजन है। इसका विषय है मिलाप वाले तंबू और आगे चलकर मंदिर पर केंद्रित आराधना है। हम भजन संहिता 79 के दो पद में पढ़ते हैं, उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। इसराइल के लिए ऐसा भयंकर संहार समझना कठिन था। परमेश्वर उनके साथ ऐसा क्यों होने दे रहा था? झूठे भविष्यद्वक्ता तो एक ही बात कहते रहते थे कि परमेश्वर की प्रजा के साथ ऐसा नहीं होगा। यद्यपि यर्मिया तो निरंतर उन्हें आने वाले प्रकोप के प्रति परमेश्वर की ओर से चेतावनी देता आ रहा था। उसे सत्य के प्रकाशन हेतु देशद्रोही कहा गया। इसराइल समझ नहीं पाया कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। यह आज भी हमारे लिए एक प्रश्न है। मेरी समझ में अनेक यहूदी हिटलर के सताव के कारण नास्तिक हो गए हैं। शायद उनके मन में भी वही प्रश्न है जो इस भजनकार के मन में है। अब दूसरा प्रश्न यह है, क्या वे परमेश्वर के विश्वास योग्य हैं? क्या वे उसके साथ उचित संबंधों में लौट आए हैं? क्या उन्होंने अपने मसीह को स्वीकार किया है? क्या वे उसे ग्रहण करते हैं? इसका उत्तर निश्चय ही नहीं है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को पूर्व काल में दंड दिया और आज भी दंड दे रहा है। मेरे विचार में कलीसिया पर भी महान दंड आया है और भविष्य में अधिक बढ़ेगा। संसार के राष्ट्रों पर भी परमेश्वर का दंड है। आइए देखें उनकी पुकार। भजन संहिता 79 उसके 5 पद में लिखा है, हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझमें आग की सी जलन कब तक भड़की रहेगी? यहूदियों की पुकार है, हे प्रभु, तू क्या हमें क्षमा नहीं करेगा? इसके पश्चात तू क्षमा के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। भजन संहिता 79 उसके 8 पद में लिखा है, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी प्रार्थना है, हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर, परंतु परमेश्वर उन्हें मिटाकर भूल कैसे जाए? केवल मसीह की मृत्यु के द्वारा। मसीह का इनकार तो दंड लेकर ही आएगा, चाहे इनकार करने वाला यहूदी हो या अन्य जाति, धनवान हो या कंगाल, दास हो या स्वतंत्र, स्त्री हो या पुरुष, काला हो या गोरा, लाल हो या सफेद। आपको दंड पाने या मुक्ति पाने के लिए प्रभु का सामना करना होगा। मात्र दो ही मार्ग हैं। अब इन सताए मनुष्यों की याचना की पुकार को सुने। भजन संहिता 79 के 9 पद में लिखा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा कर हमारे पापों को ढांप दे। इसराइल गौरव से कहता था कि परमेश्वर उनके मध्य में है और उनका उद्धार करेगा, परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं बचाया, जिसके कारण वे निंदा के पात्र बने। अन्य जातियां उनका मजाक करती थी। यहाँ भजन के अंत में अमारोक्ति को देखिए, भजन संहिता 79 उसके 13 पद में लिखा है, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। उस भावी राज्य में उनके आंसू और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक वे स्तुति गान किया करेंगे। यहाँ पर भजन 79 समाप्त होता है और अब भजन 80 में हम देखते हैं, जिसका विषय है इसराइल के चरवाहे से प्रार्थना। भजनों की इस श्रृंखला में विचारों का क्रम है जो भविष्यवाणी का विकास है। यूनानी अनुवाद बाइबल में इस भजन का उपरिलेख है अशुर, जिसके कारण कुछ टीकाकारों ने इसे उत्तरकालीन कहा है, परंतु यह आसाप का भजन है जो दाऊद का समकालीन था। अतः यह भजन दाऊद के राज्य काल में लिखा गया था। इसका उपरिलेख है प्रधान बजाने वाले के लिए शोषणीय में दूत राग में आसाप का भजन। शोषणीम का अर्थ है शोषण का फूल। हमने पहले देखा है कि शोषण का भजन मसीहा प्रभु यीशु मसीह का उल्लेख करता है। यह भजन इसराइल के चरवाहे से याचना की पुकार है कि वह फिर से उनकी अगुवाई करे। आइए हम भजन संहिता 80 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, हे इसराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है कान लगा, तू जो करुबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा। मेरे प्रियो, इसराइल का चरवाहा प्रभु यीशु को छोड़ और कोई नहीं है। हमने पहले भी भेड़ और चरवाहे की उपमाएं देखी हैं। तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, यह उस समय के संबंध में है जब इसराइल जंगल से होकर प्रतिज्ञा के देश की ओर स्थायी निवास हेतु जा रहा था। उस समय इसराइल का चरवाहा यहोवा उनका मार्गदर्शक था। निसंदेह यहोशु उनकी अगुवाई कर रहा था, परंतु वह परमेश्वर की सेनाओं के प्रधान के दिशा निर्देशन में चलता था। भजनकार परमेश्वर से याचना करता है, वह परमेश्वर जो इसराइल से परम पवित्र स्थान में भेंट कर चुका था। भजन संहिता 80 के 2 पद में लिखा है, एप्रेम बिन्यामिन और मनशे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। यहाँ पर एप्रेम बिन्यामिन और मनशे का उल्लेख क्यों किया गया है? मेरे विचार में इसका उत्तर गिनती की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 से 24 पद में पाया जाता है। इस अंश को पढ़कर आपको ज्ञात होगा कि ये तीन गोत्र वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलते थे। इसराइल को जंगल से लेकर चलने वाला वास्तव में वाचा का संदूक ही था। जैसे परमेश्वर ने उस समय उनकी अगुवाई की, वैसे ही अगुवाई की यह एक और पुकार है। भजन संहिता 80 के 3 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। यह टेक इस भजन की 3 बार है, अर्थात पद 3, 7 और 19। यह एक प्रकार का गीत है। भजन 80 उसके 4 पद में लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? मित्रों, यह एक शोक गीत है, एक संक्षिप्त विलाप। यह भजन का दुखद भाग है। पद 4 से 6, भजनकार को ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्रोधित है क्योंकि वह अपनी प्रजा की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। तब हम भजन 80 के 5 में पढ़ते हैं, तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन का यह एक अत्यधिक विशिष्ट पद है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को पीने के लिए आंसू दिए थे, भोजन हेतु भी उसने आंसू ही दिए थे। ये कष्ट के आंसू थे। इसराइलियों के तुल्य अन्य किसी जाति ने कष्ट नहीं उठाया है, परंतु वे उभर आए। इसराइल के तुल्य यदि किसी और जाति ने कष्ट उठाया होता तो वह मिट गई होती। इसराइल सदियों से आंसू पी रहा है। क्यों? क्योंकि इसराइल ने अपने चरवाहे को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर था तब उसने यरूशलेम के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना की थी, और हम इसे लुकार्ची सुसमाचार 19 अध्याय उसके 41 से 44 पद में देखते हैं। उसके शब्द व्यक्त करते हैं, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। यह एक अद्भुत अंश है और इसराइल के आंसुओं का कारण समझाता है। जब यीशु क्रूस उठाकर जा रहा था तब उसने पलटकर रोने वाली स्त्रियों से कहा, लूकार्ची सुसमाचार 23 अध्याय के 28 पद में, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। भजन संहिता 80 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। अपने मुख का प्रकाश अर्थात इसराइल के मसीहा का चेहरा, प्रभु यीशु का मुखमंडल। यहाँ एक और असाधारण पद है, भजन 80 के 8 पद में, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। परमेश्वर ने इसराइल जाति को मिस्र की बंधुआई से निकाला और प्रतिज्ञा के देश से अन्य जातियों को हटाकर उन्हें वहां स्थान दिया। इसराइल अपनी दाखलता को वहां रोपित किया। इसराइल ने परमेश्वर की आराधना के लिए वहां एक मंदिर बनवाया, परंतु एक दिन उनसे कहा गया कि उनका यह मंदिर नष्ट किया जाएगा और उन्हें विदेशों में विस्थापित किया जाएगा। क्यों? कारण वही था जिसके लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को वहां से निकाला था, परमेश्वर का त्याग। इसराइल अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक लेखादायी था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वह सौभाग्य प्रदान किया था जो अन्य किसी जाति को प्राप्त नहीं था, और उनका सौभाग्य था कि उन्होंने परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति का दर्शन किया था। भजन संहिता 80 के 9 पद में लिखा है, तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। यह पद इसराइल के विषय में है जिसे परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में रोपित किया था। भजन संहिता 80 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई, उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। अब प्रश्न यह उठता है, भजन 80 के 12 में, फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। अपनी दाखलता को रोपित करने के बाद वर्षों बाद परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। इसराइल वहां लगभग 600 वर्ष तक रहा, परंतु परमेश्वर ने किसी भी बड़े राष्ट्र को उन पर हाथ नहीं डालने दिया कि उनको नष्ट करे। सीरिया और हित्ती जातियों के लिए भी यही बात थी, परंतु एक दिन परमेश्वर ने बाड़ा हटा दिया कि इसराइल के बैरी वहां प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि इसराइल ने अपने चरवाहे को स्वीकार नहीं किया। भजन संहिता 80 के 17 पद में लिखा है, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। परमेश्वर के सीधे हाथ सामर्थ हैं। परमेश्वर के सीधे हाथ पर कौन है? इसराइल का मसीहा वहां है। भजन संहिता 116 उसके 1 पद में दाऊद कहता है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 44 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने इस पद को अपने लिए प्रयोग किया था, क्योंकि उसके विरोधी उससे मसीह होने का चिन्ह मांग रहे थे। उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय में राहेल ने बेतलेहम के मार्ग पर बिन्यामिन को जन्म दिया और उसका नाम बेनोनी रखा, जिसका अर्थ है मेरे कष्ट का पुत्र। परंतु उस शिशु को देकर याकूब को अपनी प्रिय राहेल की आंखें स्मरण आई तो उसने कहा, हम इसे बेनोनी नहीं बिन्यामिन कहेंगे, क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है। बिन्यामिन हमारे प्रभु यीशु का प्रतीक है जो इस पृथ्वी पर सताए गए मनुष्य होकर आया, परंतु आज वह परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित है, उसके लिए पिता ने कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। और एक दिन वह इस स्थान से पृथ्वी पर फिर आएगा। भजन संहिता 80 के 18 पद में लिखा है, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। इसे यूं कहना अधिक उत्तम होगा, अतः हम तुझसे दूर न होंगे, हमें जान डाल और हम तुझे पुकारेंगे। अब यह तीसरा गीत है, भजन संहिता 80 उसके 19 पद में लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, हे सेनाओं के यहोवा, हमारा पुनरुद्धार कर और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, यह एक अति अनुपम भजन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 80 समाप्त होता है और हम भजन 81 में देखते हैं, जिसका विषय है मुक्ति का गीत। अनेक अन्य भजनों की नाई यह भजन भी अपने पूर्वगामी भजनों से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, यह एक अविराम कहानी है। पिछले भजन की प्रार्थना विश्वासियों की प्रार्थना नहीं थी, यह वास्तव में समय के अंत में याकूब के कष्टों के समय की प्रार्थना थी। हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रार्थना है प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय उसका 20 पद, हे प्रभु यीशु आ, और उसके आने तक हमें उससे निवेदन करना है कि वह उसके वचन के प्रसारण में हमारी सहायता करे। यह मुक्ति का गीत है और ऊंची आवाज में आरंभ होता है, जो एकाकी गायक के लिए है। इसका उपरिलेख है प्रधान बजाने वाले के लिए गीतित राग में आसाप का भजन। आइए हम पढ़ें भजन संहिता 81 एक से चार पद, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाले वीणा और सारंगी को ले आओ, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। मेरे विचार में इसकी मुख्य कुंजी है नए चांद पर तुरही का फूका जाना। यह उचित ही है क्योंकि अपने पंखों में रोग हरण के लिए धार्मिकता के सूर्य के उदय होने से पूर्व नया चांद उदय होता है, वह उन्हें मुक्ति दिलाने निकलेगा। यह झोपड़ियों के पर्व का एक सुंदर चित्रण है। वर्ष के आरंभ में इसराइल के चार पर्व आते थे, फसा का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व, पहले फल का पर्व और तब झोपड़ियों का पर्व, और यह भजन झोपड़ियों के पर्व का सा प्रतीत होता है। झोपड़ियों के पर्व को तुरहियों का पर्व भी कहा जाता था, क्योंकि यह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। यह एक महान दिन होता था और इसकी पूर्ति अभी एक भावी घटना है। मित्रों, हम भजन 81 उसके 8 और 9 पद में आगे पढ़ते हैं, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इसराइल भला हो कि तू मेरी सुने, तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। परमेश्वर उन्हें पूर्व काल का स्मरण कराता है। तब हम भजन 81 के 10 पद में पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। यह इसराइल के लिए एक प्रतिज्ञा है और हम उसे ज्यों का त्यों रहने दें, परंतु हमारे लिए भी इस पद में एक संदेश है। परमेश्वर मुझे तो मिस्र से निकाल कर नहीं लाया था, परंतु उसने मुझे पापों से अवश्य ही निकाला है, जो इस संसार का मिस्र है। अब परमेश्वर कहता है, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। आत्मिक आशीषों से भरने की बात है, उसने ऐसा ही किया है। परमेश्वर मेरे साथ भला है और मैं आशा करता हूं कि वह आपके साथ भी भला हो। भजन संहिता 81 के 11 पद में लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इसराइल ने मुझको न चाहा। दूसरे शब्दों में, इसराइल ने मुझको न चाहा, वे अभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आए। परमेश्वर के साथ संबंधों के विषय में इसराइल और अरब में अधिक अंतर नहीं है। हमें परमेश्वर के निकट आने की गहन आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं नहीं जानता कि आप कहां पर हैं। आप परमेश्वर के निकट हैं या अभी भी आप मिस्र देश के उस निर्जन प्रदेश में गुलाम हैं। वह चाहता है कि आप अपने पाप के गुलामी से छूटकर उसके पास आ जाएं, क्योंकि वह आपके मुंह में उन आशीषों को देना चाहता है। तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा, आत्मिक आशीषों से भर दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आप उन आशीषों को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आइए आज हम परमेश्वर की निकटता में आए, अपने जीवन अपने हृदय को उसके सामने रख दें और कहें, प्रभु मैं अपने मुंह को पसारता हूँ, आप मुझे आशीष दें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आ हालेलुया, आ हालेलुया, आ हालेलुया, आ हालेलुया।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह